जपमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण, तो आज बलराम जी का हैप्पी बर्थडे है। भगवान के जन्म दिवस के ऊपर भक्त ज्यादा खुशियां मनाते हैं। आसमान से भी वर्षा हो रही है खुशी में, मंदिर के भीतर भी देवतागण अपने खुशी को व्यक्त कर रहे हैं। और वास्तव में जब हम भगवान के जन्म दिवस में ज्यादा आनंद लेते हैं तो अपने जन्म दिवस को मनाने की जो इच्छा है वो खत्म हो जाती है। अपने स्वयं के जन्म दिवस को मनाना ये एक मिथ्या अहंकार का और एक खेल है। ये दिन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मैं इस दुनिया में आया था, इसलिए ये दिन महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि मेरा आगमन इस संसार में सबके उद्धार के लिए हुआ है, इसलिए ये दिवस महत्वपूर्ण है। और सारे दुनिया को देखना चाहिए कि देखो, मैं इसी दिन अमुक साल पहले यहां संसार में आया था। तो अगर हम भगवान के जन्म दिवस में ज्यादा रुचि रखेंगे ऐसे अनुष्ठानों को मनाने के लिए, तो हमारी शारीरिक भावना, हमारा मिथ्या अहंकार सब खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से जितने उत्साह से हृदय से हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, उतने ही जल्दी हमें अपने आप को सजा धजा के रखने की इच्छा खत्म हो जाएगी। जितने अच्छी तरह से हम भगवान को भोग खिलाते हैं, उतने ही जल्दी हमें खुद स्वादिष्ट व्यंजन ग्रहण करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। जितना हम भगवान का गुणगान करते रहेंगे, उतने ही जल्दी हम हमारे खुद के गुणगान सुनने के जो इच्छा हृदय में रखते हैं वो कम हो जाएगी। और उसी तरह से जितने हर्षोल्लास से, उत्साह से, हृदय से भगवान के जन्म दिवस को हम मनाने का प्रयास करेंगे, उतने ही जल्दी खुद के हैप्पी बर्थडे मनाने की इच्छा हमारे हृदय से खत्म हो जाएगी। और हमें ज्ञात होगा कि हमारे बर्थडे में कोई हैप्पी बात नहीं है, कोई खुशी की बात नहीं है। हमारे इस संसार में जन्म लेने में और भगवान के संसार में आने में बहुत अंतर होता है। हम कर्म बंधन से बद्ध होकर आते हैं, मजबूरन हमें यहां संसार में आना पड़ता है, लेकिन भगवान अपनी स्वेच्छा से आते हैं, जब चाहे वैसे आते हैं, जो चाहे वैसे करके जाते हैं। कोई उनको रोकने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, न करने वाले आते हैं जाते हैं, लेकिन काल के प्रभाव से वो भी मिट जाते हैं, उनका नाम भी मिट जाता है, लेकिन भगवान का नाम नहीं मिट जाता। भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुणगान अमर हैं। और जो व्यक्ति इन अमर लीलाओं को, इन अमर भगवान के नाम को, जो अमर है, जो शाश्वत है, दिव्य है, इनका उच्चारण करने में जो रुचि रखेगा वो खुद अमर बन पाएगा। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सुवर्चना। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य स्थिति को जानता है, तत्वतः जानता है, श्रद्धा से जानता है, जिसको इन तत्वों का साक्षात्कार है, ऐसे व्यक्ति को पुनः यह संसार में लौटकर आने की आवश्यकता नहीं होगी। पुनर्जन्म न इति माम इति, वो मेरे पास चले आएगा। हे अर्जुन, तो भगवान का जन्म नहीं होता, आविर्भाव होता है। इसलिए हम इस उत्सव को बलराम आविर्भाव महोत्सव कहते हैं या बलराम जयंती कहते हैं। वास्तव में भगवान के अलावा और किसी के भी जन्म दिवस या आविर्भाव के दिवस को जयंती नहीं कहना चाहिए, केवल भगवान के लिए, भगवान के अवतारों के लिए, इसलिए बलराम जयंती। लेकिन हमारे देश में तो बहुत जयंती है, लेकिन वास्तव में बताया जाता है कि केवल भगवान और भगवान के अवतार, इनके आविर्भाव दिवस के लिए ही हम जयंती शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जब भगवान आते हैं किसी भी अवतार में क्यों न हो, चाहे वो साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में क्यों न आते हो, या तो फिर अपने भिन्न भिन्न अवतारों में, जैसे प्रभु रामचंद्र हैं, नरसिंह अवतार हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, अलग अलग अवतारों में जब भगवान प्रकट होते हैं यहां भौतिक संसार में, तो उनके आविर्भाव, उनका तिरुभाव, उनके कर्म यहां पर दिव्य होते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे जब बलराम जी भी आए तो उनका आविर्भाव और उनके कार्य भी दिव्य ही कहलाते हैं, और इसी तरह से हमें समझना चाहिए। कृष्ण भगवान के संदर्भ में ये उपमा दी जाती है कि जैसे सूरज का उदय होता है, थोड़े समय के लिए सूरज आकाश में रहता है और फिर सूरज अस्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण भगवान हमारे ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं, थोड़े समय के लिए लीला प्रकट करते हैं और उसके पश्चात फिर उनका तिरुभाव होता है, अदृश्य हो जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं और दूसरे किसी ब्रह्मांड में जाकर लीला प्रदर्शित करते हैं और फिर वहां से वो अप्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान की लीला नित्य है। नित्य मतलब उनकी जो प्रकट लीला है वो भौतिक सृष्टि में नित्य है, इसलिए कि भौतिक सृष्टि में अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान की हरेक लीला चल ही रही होती है। कहीं न कहीं, कहीं भगवान नरसिंह देव के रूप में अवतीर्ण होते हैं, हो रहे हैं, तो कहीं भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट हो रहे हैं, तो कहीं बलराम जी के रूप में आए हैं। इस प्रकार से भगवान अपने नाना अवतारों में हर एक ब्रह्मांड में अपने आप को प्रकट कराते हैं, केवल बद जीवों के उद्धार के लिए। तो जब बलराम जी भी इस संसार में आए तो उनका जन्म या उनका आविर्भाव भी इसी प्रकार से था। ये जो उपमा कृष्ण भगवान के लिए, के आविर्भाव के लिए दी जाती है, यही उपमा केवल बलराम जी के लिए नहीं, लेकिन अन्य जो भी भगवान के अवतार के हैं उनके लिए भी किया जा सकता है। तो जब माता देवकी और वसुदेव को कंस ने जेल में बंद कर दिया, तो आपको मालूम है कि जैसे जैसे 6 पुत्र हुए देवकी के, तो कंस जो बड़े क्रूरता से वो आते थे वहां और एक के बाद एक के बाद एक सारे बच्चों को मार डालते थे, बड़े क्रूरता से मारते थे। इस प्रकार से 6 सालों में 6 बच्चों की हत्या की कंस ने, और 7वीं बार जब माता देवकी गर्भवती हुई तो उस समय उनको हर्ष भी हुआ और शोक भी हुआ। हर्ष इसलिए हुआ कि उनको लगा कि हां, अभी विष्णु स्वयं मेरे गर्भ में प्रकट हुए हैं, उनको पता चला, क्योंकि अगर स्वयं विष्णु हमारे गर्भ, किसी के गर्भ में आए तो पता न चले कैसे हो सकता है। और शोक इसलिए हो रहा था कि वो जानती थी कि कंस ने मेरे 6 पुत्रों की हत्या कर दी है, अब 7वां पुत्र है, जब इसका जन्म होगा तो कंस इसका भी वध कर देगा। तो माता देवकी को शोक भी था और आनंद भी था, और इस प्रकार से वो सोच रही थी और अपेक्षा कर रही थी कि किस प्रकार से मैं अपने बच्चे को बचाऊंगी कंस से। और उधर कृष्ण भगवान यदुकुल के शुभचिंतक हैं, यदुकुलपति हैं, तो यदु के यदुकुल के जो निवासी हैं, जो सदस्य हैं, उनके भय को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण योजना बना रहे थे। भगवान का एक नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा मतलब जगन्नाथ, सारे ब्रह्मांड के नाथ या स्वामी। वो तो है ही भगवान, लेकिन खास करके वो यदुकुलपति हैं। कंस ने जो यदुकुल को परेशान कर रखा था, उनको डरा कर रखा था, यदुकुल के भय को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने उनकी अंतरंग शक्ति, उनकी दिव्य शक्ति योग माया को बुलाया और योग माया को बुलाकर कहा कि हे भद्रे, हे शुभे, हे देवी, तुम सारे ब्रह्मांड के लिए पूजनीय हो। मेरी इच्छा ये है कि तुम जो देवकी के गर्भ में मेरा अंश, शेष नाम का अंश है, उसे स्थानांतरित करो और जो वृंदावन में, गोकुल में जो वसुदेव की रानी है रोहिणी, उनके गर्भ में मुझे अनंत शेष को स्थानांतरित करो। तो जाओ गोकुल, नंद गोकुल में जाओ, ब्रजधाम में जाओ, वहां पर बहुत सारे ग्वाल बाल हैं, वहां ग्वाले हैं और उनकी गोपियां हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर गाय भी हैं, वहां का वातावरण बहुत सुंदर है, बहुत मधुर है, और ऐसे रम्य वातावरण को जाके और भी खूबसूरत बनाओ, और भी सुरक्षित बनाओ, क्योंकि वहां के लोग भी भयभीत हो चुके हैं कंस के डर से। तो वहां पे जाओ और ब्रज की, नंद गोकुल की शोभा और भी बढ़ाओ। तो भगवान ने जाना कि योग माया, वास्तव में योग माया के अंदर ये क्षमता है। हालांकि नंद गोकुल पहले से ही बहुत ही मधुर, बहुत ही रम्य था, फिर भी योग माया में ये शक्ति थी, ये क्षमता थी कि नंद गोकुल जैसे जगह को भी और भी रम्य, और भी मधुर बनाए। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने ठीक समझा कि वो योग माया को वहां भेजे, और उन्होंने कहा कि वहां जाकर वसुदेव की जो पत्नियां हैं, जो कंस के डर से छुपी हुई है, वहां पर नंद महाराज के संरक्षण में वो रहते हैं, उनको जाकर शांत करना, और जब तुम ऐसा करोगे तब मैं देवकी के गर्भ में स्वयं प्रवेश करूंगा, अपने षड ऐश्वर्य युक्त मेरा प्रवेश होगा, और इसके बाद में मैं प्रकट होऊंगा संसार में। साथ साथ तुम वहां पे, जहां नंद बाबा की पत्नी यशोदा मैया है, तुम वहां पर उनके गर्भ में प्रवेश करना और उनकी कन्या के रूप में तुम जन्म लेना। इस प्रकार से हम दोनों इस संसार में, इस लीला में भाई बहन के लीला करेंगे, और तुम बहुत प्रसिद्ध हो जाओगे इस संसार में, और नाना प्रकार के उपहार तुम्हें तुम्हारे भक्त करेंगे, और अलग अलग प्रांतों में तुम्हें अलग अलग नाम से पुकारेंगे, जैसे अंबिका, चंडिका, वैष्णवी, कृष्णा, इस प्रकार से अलग अलग नामों से पुकारेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। और जब भगवान ने ऐसे कहा तो शायद योग माया सोच रही होंगी कि भगवान के अंश अनंत शेष अगर देवकी के गर्भ में है, मुझे उनको यहां से आकर्षित करके रोहिणी देवी के गर्भ में स्थानांतरित करना है, ये कैसे हो सकता है? भले अनंत शेष को कौन आकर्षित कर सकता है, ये कोई साधारण जीव तो नहीं है जिसको मैं आसानी से आकर्षित कर सकूं। तो इसलिए भगवान ने शुभे ये शब्द का प्रयोग किया कि तुम्हारे ऊपर मैं आशीर्वाद देता हूं, मैं तुम्हें ये शक्ति प्रदान कर देता हूं कि तुम ये स्थानांतरित करने की जो शक्ति तुम्हें मिल जाएगी। और तब योग माया का हौसला बढ़ गया, और फिर भगवान ने कहा कि जो मेरा अवतार है, जो मेरा अंश है अनंत शेष, वास्तव में इनके कई नाम होंगे, क्योंकि तुम इनको देवकी के गर्भ से आकर्षित करोगे और रोहिणी के गर्भ में डालोगे, इस आकर्षण की वजह से इनका नाम हो जाएगा संकर्षण। और दूसरी बात, ये होंगे बहुत बलवान, इसलिए उनका नाम होगा बलभद्र। और गोकुल में जब वो प्रकट होंगे, नंद गोकुल में, तो वहां के निवासियों को बहुत प्रसन्न करेंगे अपने सुंदर सुंदर लीलाओं से। ब्रज जन रंजन, ब्रज के निवासियों को बहुत खुश करेंगे, इसलिए उनका नाम होगा राम। वास्तव में संकर्षण या बलराम, ये बल और राम दो शब्द के नाम है। बल मतलब शक्ति, केवल भौतिक शक्ति या शारीरिक शक्ति नहीं। बलराम जी या संकर्षण जी तो शारीरिक शक्ति से भी पूर्ण है, वो तो खुद भगवान है। लेकिन यहां जो शब्द बल, ये शब्द का प्रयोग किया गया है, ये शब्द आध्यात्मिक शक्ति को संबोधित करता है। जिस आध्यात्मिक शक्ति से या बल से हमें सर्वोच्च आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हो सकती है, जिसको रमण कहते हैं, वो बल को प्रदान करने वाले हैं बलराम, जिनसे हम शक्ति प्राप्त करके, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करके, हम ऊंचे से ऊंचा दिव्य आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं, वो व्यक्ति है बलराम। इसलिए उनको बलदेव भी कहते हैं। तो भगवान बलराम जी के कितने सारे नाम हुए, बलदेव, बलराम, बलभद्र, संकर्षण, अनंत शेष इत्यादि। तो इस प्रकार से कृष्ण भगवान ने योग माया को समझाया, श्री राधा गोकुलानंद की। अभी हम हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो राम शब्द है, अगर जब हम कहते हैं कि ये बलराम को संबोधित करता है, तो कई लोग पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, ये तो अयोध्यावासी प्रभु रामचंद्र को संबोधित करता है राम, ये शब्द हरे कृष्ण महामंत्र में, तो आप बलराम क्यों कहते हो। वास्तव में देखा जाए, श्रीमद् भागवत में भी बलराम जी को राम शब्द से संबोधित कई बार किया गया है। बारंबार जब भी बलराम जी की बात आती है, तो प्रायः राम शब्द से ही उनको पुकारा जाता है, क्योंकि वो सबको दिव्य आनंद प्रदान करने वाले हैं, विशेषतः गोकुल के निवासियों के लिए। तो राम शब्द तो बलराम जी के लिए तो इस्तेमाल किया ही गया है श्रीमद् भागवत में। और दूसरी बात है कि राम और बलराम में तो एक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, दोनों भगवान हैं, इसलिए दोनों ही राम कहलाते हैं। रमन्ते योगी अनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। पद्म पुराण में बताया जाता है, रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि। योगी जो बड़े बड़े योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष होते हैं, रमन्ते, वो रमण करते हैं। आत्म साक्षात्कारी पुरुष किन चीजों में रमण करते हैं, संसार की चीजों में तो नहीं रमण करते, वो रमण करते हैं सत्यानंदे चिदात्मनि, सत्य आनंद में। यहां हम किस चीज में रमण करने का प्रयास करते हैं, मिथ्यानंद में। मिथ्या आनंद में हम सोचते हैं कि हमें कुछ सुख प्राप्त होगा, लेकिन जो वास्तव में योगी है, आत्म साक्षात्कारी पुरुष है, वो सत्य आनंद में रमण करते हैं, जो कि चिदात्मनी है। चिदात्मनी मतलब जो पूरी तरह से आध्यात्मिक है। और इसलिए ऐसे परम सत्य को राम कहते हैं, क्योंकि ऐसे राम, ऐसे परम आनंद प्रदान करने वाले भगवान, इनको राम कहते हैं। तो चाहे उन्हें रामचंद्र कहिए या बलराम कहिए, दोनों राम ही है। इसलिए शिव भगवान भी पार्वती देवी को पुराणों में बताते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। वो कहते हैं कि हे देवी, मैं भी राम 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 नाम का उच्चारण करता हूं, दिव्य आनंद की अनुभूति करता हूं। शिव जी के अधिष्ठाता देव हैं संकर्षण। तो इस प्रकार से चाहे राम को बलराम, बलराम को राम कहिए या प्रभु रामचंद्र को राम कहिए, दोनों एक समान। जयदेव गोस्वामी ने तीन राम बतलाए हैं। कौन राम है वो? पहले हैं बलराम, बलभद्र राम, संकर्षण राम, अनंत शेष राम। दूसरे हैं रघुपति राम, अयोध्यावासी। और तीसरे हैं परशुराम। तो तीनों राम हैं। तो इस प्रकार से जब हम कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र में राम शब्द बलराम को संबोधित करता है, तो इसमें कोई भ्रमित होने की या चिंतित होने की बात नहीं है। जैसे जैसे हर व्यक्ति के भाव होते हैं, वैसे वैसे इस राम शब्द का को हम समझ सकते हैं। वैसे गौड़ी वैष्णव आचार्य भी बताते हैं कि ये राम शब्द जो है केवल बलराम ही नहीं, लेकिन राधिका रमण कृष्ण को भी ये संबोधित करता है। आखिर सारे अवतारों के उगम स्थान तो कृष्ण ही है। एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। जो अन्य हैं, बलदेव से लेकर नरसिंह देव, प्रभु रामचंद्र, सारे अन्य जो भी राम हैं, मूल राम कौन है? कृष्ण भगवान, श्याम सुंदर कृष्ण, वही मूल राम है। क्योंकि राधा रमण वो है जिनमें स्वयं राधा रानी रमण करती है। जो परम भक्त हैं वो है राम, और वो राम, राम को राधा रमण कहते हैं, कृष्ण। तो इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र में जो राम शब्द है, इसको हमें समझना चाहिए। तो खैर, जब कृष्ण भगवान ने इस प्रकार से समझाया योग माया को, तो योग माया ने बात मान ली। योग माया ने तीन बार उनका परिक्रमा किया। परिक्रमा करने के पश्चात ओम शब्द कह दिया। ओम शब्द कहने का मतलब तत्सत, ठीक है, आप जैसे कहते हैं वैसे ही हम करेंगे। जब हम किसी के आज्ञा का पालन हम करना चाहते हैं या हम कुछ बताना चाहते हैं कि ये काम हो जाएगा, तो ओम शब्द का प्रयोग होता है, ओम तत्सत। आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी कभी कभी तात्पर्य समाप्त करते हैं तो कभी कभी हरि ओम तत्सत कहते हैं, ओम तत्सत। तो ये ओम शब्द का प्रयोग इस समय होता है। तो योग माया देवी ने प्रणाम किया भगवान को, और फिर वो प्रकट हो गई और चली गई, और प्रकट हो गई गोकुल में। उधर जब आकर्षित होकर अनंत शेष रोहिणी देव के गर्भ में गए, तो यहां पर मथुरा में लोगों ने सोचा कि देवकी के सातवें पुत्र का गर्भपात हो गया है, और सारे महल में शोक मनाने लगे सभी लोग, कंस भी, और सोचने लगे कि कैसे गर्भपात हो गया, शायद कोई एक्सीडेंट हो गया, क्या कोई बाहरी कारण से हो गया, कोई दवाई ली, क्या किया, गर्भपात हो गया है। तो सारे लोग शोक मना रहे थे। उधर नंद गोकुल में और एक अद्भुत कार्य हो गया। वहां पर जब ये घटना घटी तो रोहिणी देवी गर्भवती थी और सातवें महीने में थी, और उस समय योग माया ने दोनों देवकी को और रोहिणी देवी को अपने योग निद्रा में डाल दिया, अपने प्रभाव में डालकर योग निद्रा में डाल दिया। तो दोनों को ठीक से पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। उधर रोहिणी देवी जब योग निद्रा में थी तो उनको एक सपना जैसा लगा कि मेरा भी गर्भपात हो गया है, मेरा बच्चा भी शायद जो गर्भ में है उसकी भी शायद मृत्यु हो गई है। तो जागी, उनको बहुत शोक करने लगी। उसी समय योग माया उनके पास गई और कहने लगी, हे देवी, चिंता मत करो, वास्तव में मैंने भगवान के अंश अनंत शेष को देवकी के गर्भ से मैंने स्थानांतरित किया, आकर्षित करके तुम्हारे गर्भ में मैं स्थानांतरित करने वाली हूं, इसलिए तुम शोक नहीं करो। और इस प्रकार से फिर बलराम जी रोहिणी देवी के गर्भ से प्रकट हुए। और उधर मथुरा में 15 दिन बाद कृष्ण भगवान प्रकट हुए और मथुरा की घटनाएं फिर हम जन्माष्टमी के दिवस पर चर्चा करेंगे। और इधर की चर्चा करते हैं नंद गोकुल में क्या हुआ। तो खैर नंद गोकुल में बलराम जी प्रकट हुए और उधर जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ, आप तो जानते ही हैं कथा कि नंद महाराज ने उठाया उनको, वसुदेव ने उनको उठाया, टोकरी में डालकर यमुना पार करके यशोदा मैया के पास में रख दिया और वहां पर बहुत ही हर्ष उल्लास से कृष्ण भगवान का जो आविर्भाव दिवस है वो मनाया गया, नंदोत्सव मनाया गया। और उसके बाद में मनाने के बाद नंद महाराज मथुरा में गए क्योंकि उनको कर भरना था, कंस के सरकार को टैक्स देना था। तो वहां गए और जब वसुदेव को पता चला कि नंद महाराज आए हैं, ये तो उनके पुराने मित्र थे, बहुत दिनों से मिले नहीं थे, तो जब उनको खबर पहुंची कि नंद महाराज आए हुए हैं तो तुरंत उनको मिलने गए और मिले तो दोनों ने आलिंगन किया और अपने खबर पूछने लगे एक दूसरे के। अभी वास्तव में वसुदेव बड़े चिंतित थे, वो सोचते थे कि मेरा बच्चा कृष्ण जिसको कि हम गोकुल में छोड़ा है, शायद कंस ने उसे भी ढूंढ निकाला होगा, कृष्ण को भी खत्म कर दिया होगा, क्योंकि वसुदेव जानते थे कि कंस के मंत्रियों ने कंस के साथ में षड्यंत्र रचा हुआ था कि हम 10 दिन में जितने भी बच्चे हुए हैं सारे ब्रज में उनकी हम हत्या करेंगे। और कंस अलग अलग जगह में अपने असुर मित्रों को भेज रहे थे सब बालकों की हत्या करने के लिए। तो इसलिए वहां पर बड़े चिंतित थे, वसुदेव वो सोच रहे थे। ऐसे ही वहां भी हो रहा था दृश्य कि उस समय बलराम भी इसी उम्र के कम भी थे बहुत, और वहां गोपियां बलराम जी का देखभाल करती थी और कृष्ण की भी देखभाल करती थी। तो वसुदेव चिंतित थे कि क्या कृष्ण है कि नहीं है। और वसुदेव के मन में देखिए क्या अवस्था हुई थी वसुदेव की, एक के बाद एक 6 पुत्र हुए, उनके आंखों के सामने 6 पुत्रों की हत्या की गई। देवकी माता की क्या परिस्थिति हुई होगी, कौन माता पिता ये सहन कर सकते हैं, 6 साल एक के बाद एक। और देखिए वसुदेव अपने वचन पे इतने सच्चे पक्के रहे, हर बार वो जाकर कंस को देते रहे बच्चे, क्योंकि उन्हें एक भी बच्चा उनके साथ में नहीं। तो वसुदेव सोच रहे थे अभी 6 बच्चों की मृत्यु हो गई, क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी 2 बच्चे तो हैं, एक है बलराम जो हमारी पत्नी रोहिणी के गर्भ से जिनने जन्म लिया है, और एक है कृष्ण। तो वसुदेव ने नंद महाराज से कहा आप कितने भाग्यशाली हैं, इतने सालों से आपको पुत्र नहीं हुआ था, संतान नहीं हुए थे आपको, लेकिन भगवान की कृपा देखिए आपको इस उम्र में बच्चा हुआ, वास्तव में बहुत शुभ चीज है, ये बहुत ही एक हर्षोल्लास की बात है, और मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं क्योंकि मैं कैदी था और अभी मुझे छुटकारा मिल गया है, मैं मुक्त हो चुका हूं अभी, तो मैं भी अभी कितना खुश हूं। लेकिन मैं इतना ही सोच रहा हूं कि ये जो 2 बच्चे हैं ये कैसे हैं। अभी वसुदेव और नंद महाराज जानते थे कि बलराम वो वसुदेव के पुत्र हैं क्योंकि रोहिणी के गर्भ से जन्म हुआ था बलराम का, लेकिन नंद महाराज ये नहीं जानते थे कि कृष्ण भगवान भी वसुदेव के ही पुत्र हैं, वो नहीं जानते थे। तो इसलिए फिर वसुदेव ने उनको बताया कि बलराम और कृष्ण दोनों ही आपके पुत्र हैं, आप उनका ख्याल रख रहे हैं, तो मुझे ये पता करना है कि दोनों कैसे हैं। कृष्ण और बलराम ठीक है ना दोनों, और आपके गाय कैसे हैं, गाय अच्छा चारा उनको मिलता है ना, आप अच्छी तरह से पानी पिलाते हैं ना। ये वैदिक सभ्यता, जैसे दो व्यवसाय जब रिश्तेदार मिलते हैं एक दूसरे से पूछते व्यवसाय कैसे चलता है, अच्छा मुनाफा आता है ना, तो उसी प्रकार से नंद महाराज जो है वैश्य हैं, तो वैश्य को जब मिलते हैं तो व्यवसाय की बात करते हैं, बिजनेस कैसे चलता है, ठीक है क्या है। जब विश्वामित्र मुनि ने वो गए थे दशरथ महाराज के पास, तो दशरथ महाराज ने उनको व्यवसाय के बारे में नहीं पूछा। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आपकी प्रगति अच्छी तरह से चल रही है ना, तो जैसे सामने वाला व्यक्ति वैसे प्रश्न पूछने चाहिए। तो वैश्य को मिले तो वैश्य को अपने गायों के बारे में पूछ रहे थे, गोरक्षा वाणिज्यम, क्योंकि कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, ये वैश्य के कर्म होते हैं। गायों को अच्छा चारा मिल रहा है, पानी मिल रहा है ना, सब कुशल मंगल है ना, गाय सब खुश है ना, और वहां ब्रज में गोकुल में सब शांत है ना, इस प्रकार से पूछ रहे थे। ज्यादा से ज्यादा बलराम और कृष्ण के बारे में वो खबर निकालना चाहते थे। इस प्रकार से जब उन्होंने देखा कि नंद महाराज दोनों कृष्ण और बलराम को अपने पुत्र के समान ही संभाल रहे हैं, तो संतुष्ट हुए और फिर कहने लगे कि देखो हम दो कितने करीब थे, लेकिन भाग्य ने हमें, किस्मत ने हमें अलग कर दिया है। अलग अलग कर्मों की वजह से हम अलग अलग, हमें परिवार मिलते हैं, कुटुंब मिलते हैं, हमें भाई बहन माता पिता पत्नी मिलते हैं, और काल के प्रभाव से हमें अलग अलग होना पड़ता है। जैसे कोई छोटे छोटे पत्ते और पौधे सागर में पड़ जाते हैं तो कभी इकट्ठे हो जाते हैं, कभी अलग अलग हो जाते हैं। तो मेरा भाग्य देखो, ये आठ पुत्र मेरे पास आए लेकिन आठों मेरे से चले गए, लेकिन इनमें से मेरे दो पुत्र भी आपके हवाले हैं, तो इसलिए ये कम से कम मुझे ये अभी शांति है कि यार आपके संरक्षण में है और वो खुश रहेंगे। तो इस प्रकार से फिर वसुदेव ने उनको सावधान कराया कि अभी आप जल्दी से कर भर के लौट के जाओ गोकुल में, क्योंकि मुझे चिंता है कि कंस के बुरे कार्य अभी शुरू हो गए हैं, सब जगह असुर इधर उधर घूम रहे हैं बच्चों की हत्या करने के लिए, इसलिए जल्दी से आप लौट कर जाओ। और जैसे वसुदेव ने बताया वैसे ही नंद महाराज लौट कर जल्दी से गए, और तुरंत ही आपको मालूम है उनके एक मेहमान आए घर में, नंद महाराज के घर में कौन आए, पूतना देवी। तो उनकी चर्चा तो अभी नहीं करेंगे, लेकिन उस क्षण से, उस दिवस से ही सारे जो ऐसे प्रकार की घटनाएं हैं वो आरंभ हो गई। तो उधर गोकुल में कृष्ण और बलराम धीरे 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 से बड़े होते जा रहे थे, और इनको देखकर सारे जो ब्रज गोपियां हैं बड़े आनंद लेती थी इनको देखकर। जब थोड़े दिन बाद जब पूतना और त्रिनावर्त की लीला समाप्त हो गई, तो कृष्ण और बलराम दोनों अपने घुटनों पर ही वो जमीन पर ही लेट कर आगे बढ़ते थे, अपने पेट पर आगे चलते थे, बैठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, बहुत उम्र कम थी। और उस समय जब गोपियां उनके दांत देखते थे कि दांत निकल रहे हैं, तो उसे बहुत आनंद होती, जैसे साधारण माता भी देखते हैं कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं तो खुशी होती, तो वैसे गोपियां भी साधारण बच्चे की तरह, साधारण माता की तरह वो कृष्ण बलराम की देखभाल करती थी। उनको नहीं मालूम था कि ये साक्षात भगवान है, और ये तो बालक हैं बलराम और कृष्ण, ये भी साधारण बालक की तरह कभी कभी घबराते थे, कभी रोते थे। तो इस प्रकार से गोपियां उनके इतने प्रति इतने आकर्षित हुए कि दिन भर उनके बारे में सोचते थे, चिंतन मनन करते रहते थे। और यहां जो जैसे जैसे वो बड़े होते गए, तो गौशाला में जाते थे, गौशाला में जो गाय के बछड़े थे बलराम और कृष्ण दोनों उनको, उनके पूंछ को पकड़ लेते थे, पूंछ को सहारा बनाकर खड़े हो जाते थे अपने पैरों में। और जब गाय के बछड़े देखते थे कि ये क्या हो गया, हमारे पूंछ कौन खींच रहा है, तो डर के मारे भागने लगते थे। और बलराम एक गाय के बछड़े के पूंछ को पकड़े हुए, कृष्ण दूसरे, और इस प्रकार से दो गाय के बछड़े भागे जा रहे हैं गौशाला में, और दोनों जो बालक हैं कृष्ण और बलराम खींच लिए जा रहे हैं वहां गोबर के बीच और मिट्टी के बीच, और सारे गोपी आकर दृश्य को देखते थे और तालियां मारकर हंसने लगते थे। और कभी कभी कृष्ण और बलराम दोनों जब आ जाते थे और कृष्ण जब त्रिनावर्त की कवच कर दिया, कृष्ण बलराम दोनों आए उस समय और गोपियां ताली मारने लगी कि कृष्ण ने क्या कितनी सुंदर लीला की, कितना अद्भुत कार्य किया। तो उस समय कृष्ण बलराम भी ताली मारने लगे जैसे कि एक साधारण बच्चे करते हैं जिनको पता नहीं होता कि ये ताली क्या है, ये लोग माँ ताली मार रहे हैं, हम भी ताली मारे, तो साधारण बालक की तरह है। माता यशोदा और माता रोहिणी बलराम और कृष्ण को चंदन और केसर का लेप लगाया करती थी, लेकिन ये दो बालक जाके मिट्टी में गोबर में लेट जाते थे, घिसते थे अपने शरीर को, और जब वापस आते थे तो पूरे शरीर में मिट्टी गोबर लगा हुआ होता था, जैसे साधारण बच्चे भी संसार के जाते हैं खेलते हैं और कपड़े गंदे करके आते हैं। इसी प्रकार से ये कृष्ण और बलराम साक्षात भगवान हैं, लेकिन साधारण बालक की तरह लीला कर रहे थे। और जैसे जैसे वो थोड़े बड़े होते गए तो पैरों पर चलने लगे, चलते फिर उनकी शरारतें शुरू हो गई और भी, और फिर सारे गोपियां हैं शिकायत लेकर आती थी माता यशोदा के पास में, बलराम के बारे में भी और कृष्ण के बारे में, कहते थे कि ये दोनों की जोड़ी बड़ी खतरनाक है, दोनों आते हैं छुपा छुपा आते हैं अपने हमारे गौशाला में और गाय के बछड़ों को छोड़ देते हैं जो बंधे हुए हैं, ठीक जब हमें दूध निकालना होता है, दोहन करना होता है, ठीक उसी समय पे थोड़े 5 मिनट जल्दी आते हैं, गाय के बछड़ों को छोड़ देते हैं ताकि गाय के बछड़े जाकर सारा दूध पी लेते हैं और हम बर्तन लेके जाते हैं दूध के लिए, खाली लौटना पड़ता है। और इतना ही नहीं, जब हम दही रखते हैं घर में तो आके चोरी करके ले जाते हैं दोनों, पहले तो पेट भर के खा लेते हैं, फिर बाहर ले जाते हैं, फिर बंदरों को बांटते हैं, और जब बंदर भी खा लेते हैं उसके बाद में जो बच जाता है फिर वो मटका जो तोड़ देते हैं और दही इधर उधर फेंक देते हैं, और जब उनको मटका नहीं मिलता है तो क्रोध से हमारे बच्चों के पास भी जाते हैं जो बड़े छोटे हैं, और गाल में जाकर उनको यूं ऐसे चिमटे क्या करते हैं हिंदी में, चिमटी करते हैं ऐसे कि वो रोने लग जाते हैं, कभी उनके कान पकड़ते हैं भाग जाते हैं, हमारे छोटे बच्चों को रुलाकर चले जाते हैं, कभी हम अंधकार में हमारे मक्खन रखते हैं तो ये बलराम और कृष्ण न जाने कैसे उनको पता चलता है कहाँ है और निकाल लेते हैं, शायद उनके शरीर में जो हीरे मोती हैं जो जवाहरात हैं उनकी रोशनी से शायद उनको दिखता है, इसलिए उनको पता चलता है कि ये दही कहाँ है मक्खन कहाँ है, वो खा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये लोग ऐसे शरारते करते हैं, जब उनको पकड़ते हैं हालांकि उनके मुख से मक्खन गिर रहा होता है वो उल्टे हमें जवाब देते हैं कि हमने मक्खन चोरी नहीं की, क्या हमारे घर में मक्खन की कमी है कि हम आपके घर में मक्खन खाने के लिए आएंगे। तो हमारा ख्याल है यशोदा देवी रोहिणी देवी कि आप इन दोनों बच्चों से ये गहने निकाल दो। तो यशोदा माता बोलती कि ठीक है मैं गहने निकाल देती हूँ, तो आइंदा ऐसे नहीं करेंगे। जब निकालने जाती तो गोपियां बोलती नहीं 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 रहने दो। वास्तव में क्या है कि इनके शरीर में ही ऐसी कोई रोशनी है, कोई उजाला है, न जाने क्या जादू है कि गहने के बिना भी इनको इस सबको दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से ये लीला करते रहे और करते करते कृष्ण बलराम अपना समय बिताते रहे, सुंदर सुंदर ऐसे लीलाएं करते रहे, बड़े होते गए। और ऐसे ही समय आया कि जब सारे ब्रजवासी थे, विशेष करके जो गोप थे, उन्होंने सलाह मशवरा किया, इतने सारे असुर आए गए हैं अभी गोकुल में, 3 साल और 4 महीने हो गए, ये 3.5-4 साल हम अभी कृष्ण बलराम के होते हुए हो गए, और इतने सारे असुर आए, यहाँ कृष्ण बलराम सुरक्षित नहीं है, तो हमें कोई दूसरी जगह पे जाना चाहिए जहां सब सुरक्षित होगा। तो उपनंद जो नंद महाराज के बड़े भाई थे, बुजुर्ग थे और सम्मान सभी लोग करते थे उनका, तो उन्होंने कहा कि मेरा विचार है कि हम वृंदावन में चले जाएं। वृंदावन में बहुत कुछ अच्छा है, वहां चारा करने के लिए घास भी अच्छा है, खेती के लिए सब कुछ अच्छा है, वहां गायों को चरने के लिए बहुत अच्छी जगह है, पास में गोवर्धन पर्वत है जहां गाय चरने के लिए जा सकती है, बहुत अच्छी जगह है, तो हमें वहां जाना चाहिए। तो कृष्ण बलराम की चिंता से सारे वृंदावन के निवासी, सारे ब्रजवासी अपने अपने बैलगाड़ी में बैठकर अपना सारा सामान निकालकर उधर चले गए। देखिए कितना प्रेम करते थे बलराम और कृष्ण से ब्रजवासी, और इस प्रकार से वो अपने बैलगाड़ी में बैठ के सभी लोग चले गए। और उधर जब वृंदावन पहुंचे तो कृष्ण और बलराम को दोनों को नंद महाराज ने गाय के बछड़ों को चराने का जो चराने की जिम्मेदारी सौंप दी, और चराने ले जाते थे वन में, और उनके जो हम उम्र के जो ग्वाल बाल थे उनको संग ले जाते थे, जो उनके गायों को भी वो ले जाते थे। इस प्रकार से बड़ी संख्या में जो गाय के बछड़े होते थे और ये ग्वाल बाल, सभी लोग बहुत आनंद से सुबह सुबह निकलते थे नाश्ता करके और वहां खेलते थे और फिर आते थे। कभी कभी कृष्ण और बलराम जब खेला करते थे वहां पर तो माता यशोदा उनको बुलाती थी। कभी कभी गांव में भी खेलते थे। उस समय एक दिन कृष्ण का जन्मदिवस था और उस समय कृष्ण बलराम दोनों खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ में, और माता यशोदा ने बुलाया कि अरे कृष्ण बलराम लौट के आओ, जल्दी से आओ, अभी खाने का समय हो गया है। देखो सुबह से तुम लोग खेल रहे हो, तुम दोनों अभी घर लौटने का समय आ गया है, तुम्हें भूख लग गई होगी, कितने गंदे हो गए हो, अभी स्नान कर लो, चलो प्रसाद ले लो, और वैसे भी आज तुम्हारा जन्मदिवस है कृष्ण, तो इसलिए तुम्हें आना चाहिए। तो कृष्ण बलराम दोनों फिर जाने ही लगे कि उस समय सारे ग्वाल बाल सोचने लगे कि ऐसे कैसे खेल को बीच में छोड़ के चले जा रहे हो, अभी ऐसा करोगे तो अगली बार हम नहीं लेंगे। तो कृष्ण बलराम दोनों अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, इनसे साक्षात भय भी भयभीत होता है, ये कृष्ण बलराम भयभीत हो गए। अरे हमारे मित्र हमको खेलने के लिए नहीं लेंगे तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, तो माता का क्रोध सहन करेंगे लेकिन इनके संग में हमें खेलना है, तो खेलते रह गए इनके साथ में। उधर माता यशोदा का क्रोध बढ़ गया और माता यशोदा छड़ी लेकर आ गई। अरे कृष्ण तुम क्या सड़क पे रहने वाले बच्चे हो क्या? अरे बलराम क्या तुम्हें घर नहीं जाना है? तो दोनों को डांटने लगे और इस प्रकार से दोनों को ले गए। यह है परम सत्य की लीला। देखिए कौन से ग्रंथ में श्रीमद् भागवत के अलावा, हमारे वैष्णव ग्रंथों के अलावा, कौन से धर्म में, कौन से ग्रंथ में ऐसी लीलाओं का वर्णन है जहां पर ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्रोत ऐसे लीलाएं छोटे बालक के समान करते हैं, जहां मां आके उनको डांटती है और जहां वो मिट्टी में अपने शरीर को सब गंदा करके जाते हैं, मां उनको नहलाती है। ये है भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा, इनकी मधुर लीला प्रदर्शित करते हैं जो नरसिंह भगवान भी नहीं करते हैं, प्रभु रामचंद्र भी ऐसे नहीं, इतने मधुर लीला प्रकट नहीं करते हैं। तो खैर जब गायों को चराने ले जाते थे तो वहां पर कृष्ण बलराम और सारे जो ग्वाल बाल हैं वो बहुत सुंदर सुंदर लीला करते थे। कभी वो पशुओं की नकल करते थे, आवाज की नकल करते थे, कभी कभी चोर पुलिस खेलते थे, कभी कभी एक कोई गाय बन जा बैल, जो बैलों के बीच में युद्ध होता था, जो खेल होता था वो उसकी नकल करते थे। इस प्रकार से ऐसे करते करते उनकी उनका समय बीत गया और ग्वाल बाल उनके संग आते थे। तो ऐसे सुंदर लीलाएं वृंदावन में हुई जिनका और विस्तार में चर्चा आगे चल के करेंगे। तो इस प्रकार से बलराम और कृष्ण ने अपना समय वृंदावन में बिताया। यही परम भगवान बलराम जो कि कृष्ण के बड़े भाई बनकर आए, त्रेता युग में छोटे भाई थे, त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र जी बड़े थे, लक्ष्मण छोटे थे। लेकिन जब लक्ष्मण जी ने देखा कि सीता देवी और प्रभु रामचंद्र जी से हमेशा डांट सुननी पड़ती है और मुझे जो सही है मैं नहीं कर पाता हूं, तो लक्ष्मण ने ठान लिया कि अगली बार जब द्वापर में मैं आऊंगा तो बड़ा भाई बनकर आऊंगा। तो इसलिए लक्ष्मण जो कि भी संकर्षण के ही अवतार हैं, अंश हैं, वो इस बार जल्दी आ गए, 15 दिन जल्दी आ गए और इस प्रकार से उनका आविर्भाव इसी तिथि पर हुआ गोकुल में। और ऐसे दिवस के ऊपर हमें चिंतन मनन करना चाहिए उन लीलाओं का, बलराम जी के ऊपर। और जब हरे कृष्ण महामंत्र हम अरे इस महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमें कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों का स्मरण करना चाहिए। बलराम जी की बहुत सारी लीलाएं हैं, एक दिवस में इनको बताना काफी नहीं है। बलराम तत्व भी जानना काफी आवश्यक है, हालांकि आज थोड़ा बहुत बलराम तत्व के बारे में भी चर्चा हो गई है, फिर भी और भी चीजें हैं बलराम तत्व के बारे में और ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं भी हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना कल सुबह के भागवत क्लास में और रविवार के भागवत क्लास में और रविवार के कार्यक्रम में फीस्ट में क्यों ना बलराम जी की लीलाओं के बारे में चर्चा जारी रहे। तो 4 प्रवचन बलराम जी के बारे में हो जाए और बलराम जी और कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाओं के बारे में करें, ताकि हमारे लिए बलराम जयंती जो है 3 दिन का है, क्योंकि हम कल भी करेंगे चर्चा, परसों भी करेंगे, तो हम बलराम जयंती मनाएंगे 3 दिन पर। आज वैसे झूलन यात्रा का आखिरी दिवस है, जहां राधा कृष्ण राधा माधव सवार है झूले पे और उनको हम झूले पे झुलाते हैं। ऐसे मधुर लीलाएं हैं, वृंदावन में लीला चलती रहती है, तो ऐसी लीलाओं में हमें शामिल होना चाहिए। हमारे हृदय को ऐसे लीला का स्थान बनाने के लिए हमें श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। भागवत का ग्रंथ रोज हमें पढ़ना चाहिए, कम से कम क्लास में तो आना चाहिए। इस प्रकार से कृष्ण बलराम के प्रति आकर्षण हमारे हृदय में बढ़ जाएगा, इनकी सुंदर दिव्य लीलाओं के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा और हमारे जीवन की सफलता को हम प्राप्त कर पाएंगे। और प्राण को त्यागने के बाद फिर हम वृंदावन गोलोक वृंदावन में जा सकते हैं और उनके संग लीला कर सकते हैं। कोई जाकर ग्वाल बाल बनेंगे, कोई जाकर गोपी मंजरी बनेंगे, कोई जाकर गाय बनेंगे, कोई जाके पत्ता, कोई पत्थर, कोई धात्री, कोई क्या, लेकिन ये सस्ती बात नहीं है। इसके लिए हमें बहुत आगे चलना है, यह सहजी भावना से नहीं स्वीकार करना चाहिए। जब तक पूरी तरह से हम शारीरिक भावना से मुक्त नहीं होते, अनर्थ निवृत्ति पूरी प्रकार से जब तक नहीं हो जाती, तब तक हम गोलोक धाम में नहीं जा पाएंगे। यहां के गोलोक धाम में जाने के लिए भी हमें इसी प्रकार की तैयारी करनी है, हमें अच्छी तरह से जाप करना है, हृदय को शुद्ध बनाना है। वहां कृष्ण बलराम भी विराजमान रहेंगे गोकुल धाम में, क्योंकि गोकुल में तो कृष्ण बलराम को तो होना ही है। इस प्रकार से हमारे हृदय की तैयारी करना ये सबसे बड़ी बात है, बाकी सारी तैयारियां जो हैं वो तो महत्व की बातें नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आइए अभी हम कीर्तन करेंगे।
जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय महावर ऋषि घाट वंशी घट द्वादश काना यह सब लीला कोइलो श्री नंद नंद श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण श्री दामादि जय जय धेनुवत्सगण जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जय अभिरनगरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन माजा जय जय कृष्ण सखा वटु द्विजराज जय राम घाट जय रोहिणी नंद जय राम घाट जय रोहिणी नंद जय जय वृंदावन वसीयत जन जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गा भक्ति तेज हारा पाइलो गोविंद चरण विराट मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरा जय जय उज्ज्वल रस रस सर्वसार पर किया भावे जहां व्रज के प्रचार श्री जन विपाद पद्म करिया स्मरण दिन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारि यमुना तीरावन चारि राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीरावन चारि यमुना तीरावन चारि जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय बलदेवा 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 जय बलदेवा। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल।
गौर प्रेमानंदे।